अध्ययन लेख 20। इस लेख का अध्ययन 13 से 19 जुलाई के दौरान किया जाएगा। विषय, आज उत्तर का राजा कौन है। ये लेख दानियल 11 के 45 पर आधारित है, जहां लिखा है, आखिरकार उसका अंत हो जाएगा और उसकी मदद करने वाला कोई न होगा। गीत 95, बढ़ती है रोशनी सच्चाई की। लेख की एक झलक, आज उत्तर का राजा कौन है, उसका नाश कैसे होगा। इन सवालों के जवाब जानने से हमारा विश्वास मजबूत होगा और हम महासंकट के दौरान आने वाली मुसीबतों का सामना कर पाएंगे। पैराग्राफ 1 और 2। सवाल, इस लेख से हम क्या जानेंगे। आज हम इस दुनिया के आखिरी दिनों की आखिरी घड़ी में जी रहे हैं। इस बात के सबूत आज पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्द यहोवा और यीशु मसीह दुनिया की सभी सरकारों का नाश कर देंगे, क्योंकि ये सरकारें परमेश्वर के राज का विरोध करती हैं। मगर तब तक उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और परमेश्वर के लोगों पर जुल्म करते रहेंगे। इस लेख में हम दानियल 11 के 40 से 12 के 1 में दी गई भविष्यवाणी पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि आज उत्तर का राजा कौन है। हम ये भी चर्चा करेंगे कि भविष्य में जब हम पर मुश्किलें आएंगी, तब हमें क्यों घबराने की जरूरत नहीं होगी और हम क्यों भरोसा रख सकते हैं कि यहोवा हमें हर हाल में बचाएगा। उत्तर का एक नया राजा। पैराग्राफ 3 और 4। सवाल, आज उत्तर का राजा कौन है, समझाइए। सन 1991 में सोवियत संघ गिर गया। तब उसके बड़े इलाके में यहोवा के जितने भी लोग रहते थे, उन्हें थोड़ी आजादी मिली। जैसे दानियल की भविष्यवाणी में कहा गया है, उन्हें थोड़ी मदद मिली। इस वजह से उन सभी देशों में साक्षी बिना रोक टोक के प्रचार कर पाए जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। कुछ ही समय के अंदर उनकी गिनती बढ़कर लाखों में हो गई। फिर कुछ साल बाद रूस और उसके मित्र राष्ट्र उत्तर का राजा बन गए। जैसे पिछले लेख में बताया गया था, किसी सरकार को उत्तर या दक्षिण का राजा तभी कहा जा सकता है जब उसमें 3 बातें होंगी। 1, वो सरकार ऐसे देश पर राज करती है जहां परमेश्वर के बहुत से लोग रहते हैं, या वो उन पर जुल्म करती है। 2, वो सरकार यहोवा से नफरत करती है, इसलिए वो उसके लोगों के साथ बुरा सलूक करती है। 3, वो सरकार या राजा दूसरे राजा से ऊपर उठने के लिए उससे लड़ता रहता है। हम क्यों कह सकते हैं कि आज उत्तर का राजा रूस और उसके मित्र राष्ट्र हैं? ऐसा कहने के 3 कारण हैं। 1, उनके इलाकों में रहने वाले लाखों साक्षियों पर उन्होंने जुल्म किया और प्रचार काम पर रोक लगा दी। 2, इससे साफ पता चलता है कि वो यहोवा और उसके लोगों से नफरत करते हैं। 3, वो दक्षिण के राजा यानी ब्रिटेन और अमेरिका से ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करते आए हैं। आइए इस बारे में खुलकर जानें। उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा आपस में भिड़ते रहते हैं। पैराग्राफ 5। सवाल क, दानियल 11 के 40 से 43 में किस समय की भविष्यवाणी की गई है। सवाल ख, उस समय क्या क्या होगा। दानियल 11 के 40 से 43 में लिखा है, अंत के समय में दक्षिण का राजा उससे भिड़ेगा और उत्तर का राजा रथों, घुड़सवारों और बहुत से जहाजों के साथ उस पर आंधी की तरह टूट पड़ेगा। वो कई देशों में घुस जाएगा और बाढ़ की तरह सब कुछ बहा ले जाएगा। वो सुंदर देश में भी घुस जाएगा और बहुत से देश हरा दिए जाएंगे। मगर जो उसके हाथ से बच जाएंगे वो ये हैं, एदोम, मोआब और अमोनियों का सबसे खास हिस्सा। वो कई देशों की तरफ अपना हाथ बढ़ाता जाएगा और मिस्र देश भी नहीं बचेगा। वो मिस्र के छिपे खजाने यानी सोने चांदी और वहां की सारी मनभावनी चीजों का मालिक बन जाएगा, लिबिया और इथियोपिया के लोग उसके कदमों में होंगे। इन आयतों में एक झलक दी गई है कि अंत के समय में क्या क्या घटनाएं घटेंगी। इन आयतों में बताया गया है कि उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा के बीच कैसे तकरार होती रहेगी। दक्षिण का राजा उत्तर के राजा से भिड़ेगा या उससे सींग लड़ाएगा। दानियल 11 का 40 फुटनोट। पैराग्राफ 6। सवाल, दोनों राजा कैसे एक दूसरे से भिड़ते रहे हैं? जैसे भविष्यवाणी में बताया गया है, दक्षिण का राजा और उत्तर का राजा पूरी दुनिया पर राज करने के लिए एक दूसरे से होड़ लगाते रहे हैं। उदाहरण के लिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद उत्तर के राजा सोवियत संघ और उसके मित्र राष्ट्रों ने यूरोप के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। ये देखकर दक्षिण के राजा ब्रिटेन अमरीका ने दूसरे देशों के साथ मिलकर ये संधि कर ली कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी सेनाओं को एक कर लेंगे और मिलकर उत्तर के राजा का मुकाबला करेंगे। इस संधि को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा अपनी अपनी सेना को मजबूत करने में खूब पैसा लगा रहे हैं ताकि वो एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर बने। दोनों राजाओं ने आपसी दुश्मनी एक और तरीके से दिखाई है। उन्होंने अफ्रीका, एशिया और लातिनी अमरीका में हुए युद्धों में एक दूसरे के दुश्मनों का साथ दिया है। हाल ही में रूस और उसके मित्र राष्ट्र बहुत ताकतवर हो गए। वो कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए भी दक्षिण के राजा से लड़ते रहे हैं। दोनों राजाओं ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया है कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामों के जरिए एक दूसरे का आर्थिक नुकसान करने और उनकी सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे दानियल ने भविष्यवाणी की थी, उत्तर का राजा परमेश्वर के लोगों पर लगातार जुल्म कर रहा है। उत्तर का राजा सुंदर देश में घुस गया। पैराग्राफ 7। सवाल, सुंदर देश का मतलब क्या है? दानियल 11 के 41 में यह भी बताया गया है कि उत्तर का राजा सुंदर देश में घुस जाएगा। ये देश क्या है? पुराने जमाने में इसराइल देश को दुनिया का सबसे सुंदर देश माना जाता था। यहेजकेल 20 का 6। इस देश की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहां यहोवा की उपासना की जाती थी। मगर ईसवी सन 33 से कोई एक देश सुंदर देश नहीं था, क्योंकि तब से यहोवा की उपासना करने वाले लोग दुनिया के कई देशों में रहे हैं और आज वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो आज के जमाने में सुंदर देश का मतलब है सच्ची उपासना से जुड़े काम जो यहोवा के लोग करते हैं, जैसे सभाएं और प्रचार काम। पैराग्राफ 8। सवाल, इसका क्या मतलब है कि उत्तर का राजा सुंदर देश में घुस गया? आखिरी दिनों में उत्तर का राजा सुंदर देश में कई बार घुस गया। मिसाल के लिए, जब जर्मनी उत्तर का राजा बना तब वो सुंदर देश में घुस गया, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। वो कैसे? जर्मनी की नाज़ी सरकार ने परमेश्वर के लोगों पर बहुत जुल्म किए और उनमें से कई लोगों को मार डाला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब सोवियत संघ उत्तर का राजा बना तो वो भी सुंदर देश में घुस गया। उसने भी परमेश्वर के लोगों को बहुत सताया और उन्हें अपने देश से निकाल दिया। पैराग्राफ 9। सवाल, कुछ साल पहले रूस और उसके मित्र राष्ट्र कैसे सुंदर देश में घुस गए? कुछ साल पहले आज के उत्तर के राजा यानी रूस और उसके मित्र राष्ट्र भी सुंदर देश में घुस गए। किस मायने में? सन 2017 में उन्होंने रूस में यहोवा के लोगों के काम पर रोक लगा दी और कुछ भाई बहनों को जेल में डाल दिया। उत्तर के इस राजा ने हमारे प्रकाशनों पर भी रोक लगा दी, नई दुनिया अनुवाद बाइबल पर भी। इस राजा ने रूस में हमारे शाखा दफ्तर पर और राजघरों और सम्मेलन भवनों पर कब्जा कर लिया। ये सब देखने के बाद 2018 में शासी निकाय ने बताया कि रूस और उसके मित्र राष्ट्र आज उत्तर का राजा है। भले ही यहोवा के लोगों को बेरहमी से सताया जाता है, मगर वो सरकारों से बगावत नहीं करते और न ही सरकारों को बदलने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय वो बाइबल की सलाह मानकर उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऊंची पदवी रखते हैं। जब सरकारें इस बारे में फैसला करती हैं कि साक्षियों को उपासना करने की आजादी मिलनी चाहिए या नहीं, तब साक्षी खास तौर से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पहला तिमुथियुस 2:2। क्या उत्तर का राजा दक्षिण के राजा को हरा देगा? पैराग्राफ 10। सवाल: क्या उत्तर का राजा दक्षिण के राजा को हरा देगा? समझाइए। दानियल 11:40-45 की भविष्यवाणी में खास तौर से उत्तर के राजा के बारे में बताया गया है कि वो क्या क्या करेगा, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि वो दक्षिण के राजा को हरा देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब यहोवा और यीशु हरमगेदोन में सभी सरकारों का नाश करेंगे, तब उनमें दक्षिण का राजा भी होगा। प्रकाशित वाक्य 19:20 में बताया गया है कि हरमगेदोन दक्षिण के राजा के जीते जी होगा। ये हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं, क्योंकि दानियल और प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों से यही पता चलता है। पैराग्राफ 11। सवाल: दानियल 2:43-45 से क्या पता चलता है? दानियल 2:43-45 में लिखा है, जैसे तूने देखा कि कच्ची मिट्टी और लोहा मिला हुआ था, वैसे ही इस राज्य के कुछ हिस्से लोगों से मिले होंगे, मगर वो एक दूसरे से नहीं जुड़े रहेंगे, ठीक जैसे लोहा मिट्टी से नहीं जुड़ता। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज कायम करेगा जो कभी नाश नहीं किया जाएगा। वो राज किसी और के हाथ में नहीं किया जाएगा। वो राज इन सारी हुकूमतों को चूर चूर करके उनका अंत कर डालेगा, और सिर्फ वही हमेशा तक कायम रहेगा, ठीक जैसे तूने देखा कि पहाड़ में से एक पत्थर बिना किसी के हाथ के काटे आया और उसने लोहे, तांबे, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर कर डाला। महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि भविष्य में क्या होगा। यह सपना सच्चा है, और इसका जो मतलब बताया गया है वो भरोसे के लायक है। दानियल ने एक भविष्यवाणी में कुछ हुकूमतों के बारे में बताया। वो ऐसे देश पर राज करेंगे जहां परमेश्वर के ज्यादातर लोग रहते हैं, या फिर उन पर जुल्म करेंगे। उन हुकूमतों को एक विशाल मूरत के अलग अलग हिस्सों से दर्शाया गया है। सबसे आखिरी हुकूमत को मूरत के पैरों से दर्शाया गया है जो लोहे और मिट्टी के बने हैं। ये आखिरी हुकूमत ब्रिटेन अमरीकी विश्व शक्ति है। इस भविष्यवाणी से पता चलता है कि जब परमेश्वर का राज इंसानी सरकारों का नाश करेगा, तब ब्रिटेन अमरीकी विश्व शक्ति हुकूमत कर रही होगी। पैराग्राफ 12। सवाल क: जंगली जानवर का सातवां सिर किसे दर्शाता है? सवाल ख: ये क्यों एक अहम जानकारी है? प्रेषित यूहन्ना ने भी कुछ ऐसी विश्व शक्तियों के बारे में बताया जो ऐसे देश पर राज करेंगे जहां परमेश्वर के ज्यादातर लोग रहते हैं। यूहन्ना की भविष्यवाणी में इन हुकूमतों को एक जंगली जानवर से दर्शाया गया है जिसके सात सिर हैं। उस जानवर का सातवां सिर ब्रिटेन अमरीकी विश्व शक्ति है। ये एक अहम जानकारी है, क्योंकि भविष्यवाणी में ये नहीं दिखाया गया है कि सातवें सिर के बाद कोई और सिर निकलता है। जब ये सातवां सिर यानी ब्रिटेन अमरीकी विश्व शक्ति हुकूमत कर रही होगी, तब यीशु अपनी स्वर्ग की सेना के साथ मिलकर उसका और पूरे जंगली जानवर का नाश कर देगा। बहुत जल्द उत्तर का राजा क्या करने वाला है? पैराग्राफ 13 और 14। सवाल क: मागोग देश का गोग किसे कहा गया है? सवाल ख: क्या बात उसे यहोवा के लोगों पर हमला करने के लिए भड़काएगी? यहेजकेल की एक भविष्यवाणी में बताया गया है कि उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा का नाश होने से पहले क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। ऐसा लगता है कि यहेजकेल 38:10-23, दानियल 2:43-45, 11:44-12:1 और प्रकाशित वाक्य 16:13-16 और 21 में एक ही बात कही गई है। इन सारी आयतों में एक ही समय पर होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की गई है, बस उन्हें अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो आइए देखें कि इन भविष्यवाणियों के मुताबिक बहुत जल्द क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। महासंकट शुरू होने के कुछ समय बाद सारे जगत के राजा यानी दुनिया के राष्ट्र मिलकर एक गठबंधन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 16:14। बाइबल में उस गठबंधन को मागोग देश का गोग कहा गया है। यहेजकेल 38:2। राष्ट्रों का यह गठबंधन या समूह परमेश्वर के सभी लोगों पर हमला करेगा और उनका नामो निशान मिटाने की कोशिश करेगा। क्या बात उन्हें हमला करने के लिए भड़काएगी? प्रेषित यूहन्ना ने एक दर्शन में देखा कि उसी दौर में परमेश्वर के दुश्मनों पर बड़े बड़े ओले बरसते हैं। शायद इसका मतलब है कि उस समय यहोवा के लोग दुश्मनों को ये संदेश सुनाएंगे कि उनका नाश होने वाला है। ये संदेश ओलों की जबरदस्त मार जैसा होगा। शायद यही संदेश राष्ट्रों के गठबंधन को भड़काएगा कि वो परमेश्वर के लोगों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह मिटा दें। पैराग्राफ 15 और 16। सवाल क, दानियल 11:44 और 45 में शायद किन घटनाओं की भविष्यवाणी की गई है? सवाल ख, उत्तर के राजा का और बाकी राष्ट्रों का क्या होगा जिन्हें मागोग देश का गोग कहा गया है? दानियल 11:44 और 45 में लिखा है, मगर पूरब और उत्तर से मिलने वाली खबरों से वो बेचैन हो उठेगा और बड़ी जलजलाहट में आकर बहुतों को नाश करने और मिटाने के लिए निकल पड़ेगा। वो अपने शाही तंबू विशाल सागर और सुंदर देश के पवित्र पहाड़ के बीच खड़े करेगा। आखिरकार उसका अंत हो जाएगा और उसकी मदद करने वाला कोई न होगा। शायद इन आयतों में दी गई भविष्यवाणी का भी यही मतलब है कि परमेश्वर के दुश्मनों को कड़ा संदेश सुनाया जाएगा और वो परमेश्वर के लोगों पर आखिरी हमला करेंगे। उन आयतों में बताया गया है कि उत्तर का राजा पूरब और उत्तर से मिलने वाली खबरें सुनकर बेचैन हो जाएगा और बड़ी जलजलाहट में आकर निकल पड़ेगा। वो बहुतों को मिटाने की कोशिश करेगा। यहां बहुतों का मतलब शायद परमेश्वर के लोग हैं। तो हम कह सकते हैं कि दानियल ने भी यही बताया कि परमेश्वर के सभी लोगों पर एक आखिरी हमला होगा। जब उत्तर का राजा और दुनिया की बाकी सरकारें यहोवा के लोगों पर हमला करेंगी तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का क्रोध भड़क उठेगा। तब हर्मगिदोन युद्ध शुरू होगा। इस युद्ध में उत्तर के राजा का और बाकी राष्ट्रों का नाश हो जाएगा जिन्हें मागोग देश का गोग कहा गया है। उस वक्त उत्तर के राजा की मदद करने वाला कोई ना होगा। दानियल 11:45। पैराग्राफ 17। सवाल क, दानियल 12:1 में बताया गया मिकाएल कौन है? सवाल ख, वो आज क्या कर रहा है और भविष्य में क्या करेगा? उत्तर के राजा के नाश का जिक्र करने के तुरंत बाद दानियल 12:1 में इस बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है, उस समय के दौरान मिकाएल खड़ा होगा, वो बड़ा हाकिम जो तेरे लोगों की तरफ से खड़ा है, और संकट का ऐसा समय आएगा जैसा एक राष्ट्र के बनने से लेकर उस समय तक नहीं आया होगा। उस समय के दौरान तेरे लोग बच जाएंगे, हर कोई जिसका नाम किताब में लिखा है बच जाएगा। यहां लिखा है कि उत्तर के राजा और उसका साथ देने वालों का नाश कैसे होगा और हम कैसे बचाए जाएंगे। उस आयत का मतलब क्या है? उसमें बताया गया मिकाएल मसीह यीशु का एक और नाम है जो आज राज कर रहा है। जब 1914 में परमेश्वर का राज शुरू हुआ तब से मिकाएल परमेश्वर के लोगों की तरफ से खड़ा है। बहुत जल्द वो एक और मायने में खड़ा होगा। कैसे? हर्मगिदोन नाम के युद्ध में वो परमेश्वर के दुश्मनों का नाश कर देगा। दानियल ने कहा कि संकट का ऐसा समय आएगा जैसा पहले कभी नहीं आया था। हर्मगिदोन उस समय के आखिर में होगा। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी में हर्मगिदोन को और उससे पहले के समय को महासंकट कहा गया है। पैराग्राफ 17 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक, हर्मगिदोन में यीशु स्वर्ग की सेना के साथ मिलकर शैतान की दुनिया का नाश कर देगा और यहोवा के लोगों को बचाएगा। क्या आपका नाम किताब में लिखा होगा? पैराग्राफ 18। सवाल, हमें भविष्य में घबराने की जरूरत क्यों नहीं होगी? बहुत जल्द दुनिया पर ऐसा भयानक संकट टूट पड़ेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, मगर हमें घबराने की जरूरत नहीं होगी। दानियल और यूहन्ना दोनों ने बताया कि जो लोग यहोवा और यीशु की सेवा करते हैं उन्हें उस संकट से बचाया जाएगा। दानियल ने बताया कि उन्हीं लोगों को बचाया जाएगा जिनका नाम एक किताब में लिखा होगा। दानियल 12:1। हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा नाम भी उस किताब में लिखा जाए? हमें ये जाहिर करना चाहिए कि हम परमेश्वर के मेमने यानी यीशु पर विश्वास करते हैं। हमें अपना जीवन यहोवा को समर्पित करना चाहिए और बपतिस्मा लेना चाहिए। हमें परमेश्वर के राज का साथ भी देना चाहिए। ये हम कैसे कर सकते हैं? दूसरों को यहोवा के बारे में सिखाकर। पैराग्राफ 19। सवाल, हमें अभी से क्या करना चाहिए और क्यों? हमें अभी से यहोवा पर और उसके संगठन पर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर के राज का साथ देने का भी यही समय है। ऐसा करने से हमें उस वक्त बचाया जाएगा जब परमेश्वर का राज उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा का नाश कर देगा। आपका जवाब क्या होगा? आज उत्तर का राजा कौन है? इसका क्या मतलब है कि उत्तर का राजा सुंदर देश में घुस गया? उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा का क्या होगा? गीत 149। शानदार जीत। लेख समाप्त।